एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
और आप सबका स्वागत है।
आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। ये हमारे आज के डिजिटल दौर को समझने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है।
हाँ, किताब है जेफ जार्विस की, द गुटेनबर्ग पैरेंथेसिस। पूरा नाम है द एज ऑफ प्रिंट and its lessons for the age of the internet। हम कोशिश करेंगे कि इसके जो गहरे विचार हैं उन्हें आसान बातचीत में समझ सकें।
हाँ, और ये किताब ना आज के समय में बहुत जरूरी है। हम सब कहीं ना कहीं ये महसूस तो करते ही हैं कि भाई इंटरनेट ने, डिजिटल चीजों ने हमारी जिंदगी बदल दी है।
बिल्कुल, काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, सब कुछ।
हाँ, और अक्सर ये बदलाव हमें थोड़ा या तो डरा देता है या कन्फ्यूज कर देता है। जार्विस की ये किताब इसी उथल पुथल को एक बड़े ऐतिहासिक नज़रिए से देखने में मदद करती है, और ये सवाल भी उठाती है कि इस नए दौर में हमारी संस्थाओं की, हमारी बातचीत की भूमिका क्या है, उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए।
बिल्कुल सही। तो चलिए शुरुआत लेखक से ही करते हैं। जेफ जार्विस कौन है ये?
जेफ जार्विस, हाँ, वो अमेरिका के जाने माने पत्रकार हैं, मीडिया पर लिखते हैं, प्रोफेसर भी हैं, और खास बात यह है कि उन्होंने मीडिया के दोनों दौर, प्रिंट वाला और डिजिटल वाला, दोनों को बहुत करीब से देखा है, जिया है।
सही कहा। सिर्फ बाहर से देखने वाले नहीं, उन्होंने बाकायदा टीवी गाइड, पीपल जैसी बड़ी मैगजीन में काम किया।
हाँ, और एंटरटेनमेंट वीकली तो उन्होंने शुरू करने में मदद की थी।
अच्छा, और फिर जब इंटरनेट आया तो वो शुरुआती ब्लॉगर्स में से थे। उनका ब्लॉग बज मशीन काफी चला भी। आजकल वो CUNY न्यूयॉर्क में जर्नलिज्म पढ़ाते हैं।
तो वो सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहे हैं, उन्होंने वो बदलाव, वो शिफ्ट खुद महसूस किया है प्रिंट से डिजिटल की तरफ।
हाँ, और यही उनके नजरिए को खास बनाता है। वो न तो पुराने दिनों का रोना रोते हैं, न ही आंख बंद करके डिजिटल की तारीफ करते हैं।
हाँ,
वो एक इतिहासकार की तरह थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि भाई चल क्या रहा है, और पूछते हैं कि ये जो तकनीक है, ये हमारी बातचीत, हमारे समाज, हमारी संस्थाओं की भूमिका को असल में कैसे बदल रही है, उनका लक्ष्य कैसे बदल रहा है।
बिल्कुल,
वो गवाह भी हैं और भागीदार भी, इसीलिए उनकी बात में वजन लगता है। वो हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उसके असर के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं।
तो आते हैं किताब के सबसे बड़े आइडिया पर, गुटेनबर्ग कोष्ठक, गुटेनबर्ग पेरेंथिसिस। जार्विस का कहना है, और ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है, कि प्रिंट का युग,
हाँ,
जो गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस से शुरू हुआ लगभग 1450 के आसपास और करीब 1950 तक चला, मोटे तौर पर 500 साल।
500 साल। हाँ, ये 500 साल इंसानी बातचीत के जो हजारों साल का इतिहास है, उसमें बस एक छोटा सा ठहराव था, एक कोष्टक, जैसे हम लिखते हुए पैरेंथेसिस लगाते हैं ना, वैसा।
ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। हम जिसे नॉर्मल मानते आए हैं, छपी हुई किताबें, अखबार, एक लेखक का लिखा हुआ फाइनल प्रोडक्ट,
हाँ, जिसे बदला नहीं जा सकता।
इस कोष्टक के पहले हजारों साल तक इंसान का बात करने का तरीका ज्यादातर मौखिक था,
बिल्कुल आमने सामने की बातचीत जैसा,
समुदाय में होता था और लगातार चलता रहता था। जानकारी कोई ठहरी हुई चीज नहीं थी, बल्कि एक बहती हुई प्रक्रिया थी, हमेशा बदलती हुई।
और अब इस कोष्टक के बाद, यानी इंटरनेट के आने से, हम एक तरह से वापस उसी पुराने ढर्रे पर लौट रहे हैं।
अच्छा।
हाँ, बातचीत वाले, जुड़े हुए, नेटवर्क वाले तरीकों पर। फर्क बस इतना है कि अब हमारे पास डिजिटल टूल्स हैं और स्केल बहुत बड़ा है। तो किताब का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि ये जो डिजिटल मीडिया है, ये हमारी पुरानी साक्षरता या ज्ञान को खत्म नहीं कर रहा है,
जो डर कई लोगों को लगता है।
हाँ बिल्कुल, जार्विस कहते हैं कि ये उसे बदल रहा है। ये हमें जानकारी बनाने और शेयर करने के ज्यादा पुराने, शायद ज्यादा मानवीय और ज्यादा मिलजुल कर काम करने वाले तरीकों की तरफ लौटा रहा है।
जी, और ये किताब दरअसल हर उस व्यक्ति के लिए है जो ये समझना चाहता है कि भाई आजकल ये हो क्या रहा है, क्यों सोशल मीडिया इतना हावी है,
फेक न्यूज की समस्या क्यों है।
हाँ, और क्यों पुरानी संस्थाएं जैसे बड़े मीडिया हाउस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, वो क्यों एक तरह से संघर्ष कर रही हैं।
जार्विस का तर्क यही है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उस 500 साल पुराने प्रिंट वाले कोष्ठक से बाहर निकल रहे हैं और नए नियम अभी बन ही रहे हैं। ये असल में संस्थाओं की भूमिका और उनके लक्ष्य के बदलने का ही दौर है। चलिए इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। किताब हमें एक तरह की यात्रा पर ले जाती है। शुरुआत होती है कोष्ठक से पहले के युग से, प्रिंटिंग प्रेस से भी पहले की दुनिया, सोचिए जरा कैसी रही होगी वो दुनिया।
उस वक्त ज्ञान कैसे बचता था, कैसे फैलता था। ज्यादातर तो बोलकर ही है ना, कहानियां, कविताएं, किस्से, सार्वजनिक बहसें।
हाँ, लिखना पढ़ना तो बहुत कम लोगों को आता था।
बिल्कुल, तो याददाश्त और सुनाना यही मुख्य तरीके थे। ज्ञान किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं था, वो समुदाय का साझा खजाना जैसा था।
और उसका लक्ष्य भी सिर्फ जानकारी देना नहीं था।
सही कहा, बल्कि समुदाय को जोड़ना, मनोरंजन करना, जो पुरानी परंपराएं हैं उन्हें जिंदा रखना।
हाँ, और उस समय हाथ से लिखी हुई चीजें भी थीं, पांडुलिपियां, लेकिन वो आज की छपी किताब जैसी नहीं थी, बिल्कुल नहीं।
हर कॉपी अलग होती थी थोड़ी, लिखने वाले की गलतियां हो सकती थीं, या उसने खुद कुछ नोट्स जोड़ दिए, हाशिए पर कुछ लिख दिया।
हाँ, ये सब आम था, कोई एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड वर्जन नहीं होता था। किताब एक प्रोडक्ट से ज्यादा एक बातचीत का हिस्सा थी। ज्ञान एक सतत प्रक्रिया थी, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं।
बिल्कुल,
बहता रहता था, बदलता रहता था, उस पर लोग बात करते रहते थे। कोई ये सोचता ही नहीं था कि बस अब ये फाइनल हो गया।
हाँ, ये बहुत ही तरल, इंटरैक्टिव और समुदाय पर आधारित व्यवस्था थी।
फिर आया कोष्ठक के अंदर का दौर, प्रिंट क्रांति, गुटनबर्ग का वो चल टाइप, मूवेबल टाइप का आविष्कार, उसने सब कुछ बदल दिया।
एकदम से
अब एक जैसी हजारों लाखों किताबें बनाना मुमकिन हो गया। ये वाकई एक धमाका था।
और इसका असर कितना गहरा हुआ, सोचिए, एक जैसी छपाई होने लगी तो भाषाओं का मानकीकरण हुआ, मतलब स्पेलिंग, ग्रामर, ये सब एक जैसे होने लगे।
सही,
लेखक का जो आइडिया है, ऑथर का, वो मजबूत हुआ कि भाई इस रचना का एक अकेला मालिक या स्रोत है।
हाँ, एक अथॉरिटी।
बिल्कुल, तैयार काम यानी फिनिश्ड वर्क का विचार आया कि ये चीज अब पूरी हो गई है, इसे बदला नहीं जा सकता। और फिर इसी से जुड़कर कॉपीराइट का विचार भी आया। संस्थाओं का रोल भी बदल गया। अब उनका काम था ज्ञान को मानकीकृत करना और उसे बड़े पैमाने पर फैलाना।
इसका एक जबरदस्त उदाहरण वो मार्टिन लूथर वाला है ना, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन।
हाँ बिल्कुल, कैसे प्रिंटिंग प्रेस ने लूथर के विचारों को चर्च के कंट्रोल से बाहर निकालकर आम लोगों तक पहुंचा दिया।
शायद वो इतिहास का पहला वायरल मोमेंट था।
कह सकते हैं प्रिंट ने ही यूरोप में पुनर्जागरण, वैज्ञानिक क्रांति, प्रबोधन काल, इन सबको संभव बनाया। ज्ञान कुछ ही लोगों के हाथ से निकलकर ज्यादा लोगों तक पहुंच पाया।
हाँ, और इसी दौर में फिर अखबार आए, पत्रिकाएं आईं, इनसे एक सार्वजनिक क्षेत्र बना, पब्लिक स्फीयर, एक ऐसा मंच जहां लोग एक जैसे मुद्दों पर जानकारी पा सकें, बहस कर सकें।
लेकिन ये मॉडल ज्यादातर एक तरफा था।
हाँ बिल्कुल, कुछ लोग लिखते या छापते थे और बाकी सब सिर्फ पढ़ते थे, वन टू मैनी मॉडल। इस पूरे प्रिंट युग का जो लॉजिक था वो था एक क्रम में चलना, लीनियरिटी, चीज का फाइनल होना, फाइनैलिटी, एक अथॉरिटी का होना और बड़े पैमाने पर उत्पादन। हमारी शिक्षा, कानून, सरकार, ये सब इसी तर्क पर बने हैं।
और इनका लक्ष्य क्या था? विश्वसनीय, मानकीकृत जानकारी बनाना और उसे लोगों तक पहुंचाना।
और अब हम आ गए हैं कोष्टक के बाद के दौर में, डिजिटल युग, जहां जार्विस कहते हैं बातचीत की वापसी हो रही है। इंटरनेट उस 500 साल पुराने प्रिंट के नियमों को तोड़ रहा है।
कैसे?
सबसे पहली बात तो ये कि तैयार उत्पाद की जगह फिर से लगातार चलने वाली प्रक्रिया ले रही है।
विकिपीडिया
सबसे अच्छा उदाहरण
है ना, वो कभी पूरा नहीं होता, उसे कोई ना कोई लगातार बदल रहा है, सुधार रहा है, कुछ जोड़ रहा है, वो समुदाय मिलकर बना रहा है।
ये आजकल की खबरें देख लीजिए, कोई घटना होती है तो खबर एक बार छपकर खत्म नहीं होती।
नहीं, वो अपडेट होती रहती है, ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग्स, ये सब क्या दिखाते हैं कि जानकारी अब स्थिर नहीं है, बह रही है। ज्ञान फिर से एक प्रोसेस बन गया है।
दूसरा बड़ा बदलाव, हम लोग यानी पाठक या दर्शक अब सिर्फ चुपचाप लेने वाले नहीं रहे। हम सब अब बनाते भी हैं, शेयर करते हैं, अपनी राय देते हैं। ब्लॉग्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इन सब ने हमें दर्शक से भागीदार बना दिया है।
मीडिया का मॉडल ही बदल गया है, वन टू मैनी से अब मैनी टू मैनी हो रहा है। हर कोई बोल सकता है, हर कोई सुन सकता है, हमारी भूमिका ही बदल गई है।
और यही से वो मुश्किल शुरू होती है, अथॉरिटी का संकट।
हाँ, कि भरोसा किस पे करें?
जब हर कोई बोल रहा है तो किसकी बात माने? वो जो पुराने गेटकीपर्स थे, संपादक, प्रकाशक, विशेषज्ञ, जो पहले तय करते थे कि क्या छपेगा, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत,
उनका कंट्रोल कम हो गया है।
हाँ, और इससे एक तरह की अफरातफरी दिखती है, गलत सूचना, फेक न्यूज, ये सब बढ़ गया है।
ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। जार्विस इसे कैसे देखते हैं? क्या कहते हैं वो इस बारे में?
जावेस मानते हैं कि ये बदलाव मुश्किल जरूर है, लेकिन शायद जरूरी भी है। उनका तर्क ये है कि भरोसा या विश्वास अब सिर्फ बड़ी संस्थाओं या पदों से नहीं आ रहा।
अच्छा, तो कहां से आ रहा है?
अब वो नेटवर्क से आ रहा है, लोगों के आपसी कनेक्शन से, किसी व्यक्ति की रेपुटेशन से, पारदर्शिता से और पीयर रिव्यू यानी साथियों द्वारा समीक्षा से।
ये सब बनने में तो समय लगेगा।
बिल्कुल, ये रास्ता आसान नहीं है, उबड़ खाबड़ है, लेकिन जावेस को लगता है कि शायद यही भविष्य है। संस्थाओं का रोल अब गेटकीपर बने रहना नहीं होना चाहिए।
तो क्या होना चाहिए?
उनका रोल होना चाहिए एक स्वस्थ नेटवर्क और बातचीत को संभव बनाना, उसे फैसिलिटेट करना। उनका लक्ष्य ज्ञान को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उसे साझा करके और बढ़ाना होना चाहिए।
तो इस पूरी तस्वीर से कुछ बड़े सबक या संदेश क्या निकलते हैं?
एक तो ये कि आज जो ये डिजिटल दुनिया में उथल पुथल दिख रही है, ये हमें भले ही एकदम नई और अनोखी लगे, लेकिन इतिहास देखें तो जब भी कोई नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है, ऐसे ही बड़े बदलाव हुए हैं।
हाँ, ये समझने से शायद आज की जो चुनौतियां हैं उनसे घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। ये हमारी भूमिका को समझने का एक नया फ्रेमवर्क देता है।
दूसरा बड़ा संदेश है ज्ञान की सहयोगात्मक प्रकृति के बारे में। प्रिंट ने हमें वो अकेले जीनियस वाली कहानी पर बहुत यकीन दिलाया।
हाँ, कि कोई एक महान लेखक या वैज्ञानिक होता है,
लेकिन जार्विस याद दिलाते हैं कि असल में ज्ञान हमेशा से मिलजुल कर ही बना है, बातचीत से, एक दूसरे के विचारों पर आगे बढ़कर। डिजिटल टूल्स तो बस इस पुरानी इंसानी आदत को और बड़े स्केल पर मुमकिन बना रहे हैं।
ये हमारी क्रिएटिविटी की भूमिका को देखने का नजरिया बदलता है।
तीसरा, अथॉरिटी और भरोसे का बदलता हुआ रूप। जो पारंपरिक संस्थाएं थी जिनकी सत्ता प्रिंट पर टिकी थी, उन्हें चुनौती मिल रही है। अब अथॉरिटी ज्यादा बट रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है,
और किसी बात की लेजिटिमेसी मतलब वैधता वो अक्सर समुदाय या नेटवर्क तय कर रहा है। ये एक्सपर्ट्स और संस्थाओं की भूमिका पर बड़ा सवाल है।
चौथा, शिक्षा में बदलाव की जरूरत। हमारे स्कूल कॉलेज ज्यादातर अभी भी प्रिंट युग की सोच पर चल रहे हैं।
हाँ, अकेले पढ़ो, अकेले इम्तिहान दो, एक जैसा सिलेबस सबके लिए।
जार्विस जैसे लोग कहते हैं कि डिजिटल युग में हमें सीखने के ज्यादा मिलजुल कर नेटवर्क वाले तरीकों की जरूरत है। सीखने का लक्ष्य सिर्फ जानकारी रटना नहीं, बल्कि जुड़ना, सहयोग करना और मिलकर कुछ बनाना होना चाहिए।
पांचवा, मीडिया का भविष्य। कई लोग सोचते हैं कि जब आम लोग भी लिखने बोलने लगे हैं जैसे सोशल मीडिया पर, तो पत्रकारिता का क्या होगा?
हाँ, ये डर तो है,
लेकिन जार्विस इसे एक मौके की तरह देखते हैं। मीडिया का पुनर्जागरण हो सकता है। मीडिया की भूमिका सिर्फ ऊपर से जानकारी देने वाले की न रहे, बल्कि समुदाय के साथ मिलकर बातचीत का मंच बनाने वाले की हो।
और छठा, संस्थाओं का विकास। जार्विस ये नहीं कहते कि पुरानी संस्थाएं खत्म कर दो,
नहीं,
बल्कि वो कहते हैं कि उन्हें बदलने की, अडेप्ट करने की जरूरत है। हाँ, प्रिंट युग की संस्थाएं भी नए नेटवर्क वाले दौर में काम की हो सकती हैं, अगर वो अपनी पुरानी भूमिका जैसे कंट्रोल करना और लक्ष्य जैसे सिर्फ तैयार उत्पाद देना को बदलने को तैयार हों।
किताब में कुछ बातें ऐसी हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, बहुत पावरफुल हैं।
हाँ, जैसे वो सबसे बुनियादी बात, लगभग 500 साल का प्रिंट का युग मानव इतिहास में एक अपवाद था, नियम नहीं। हम डिजिटल जुड़ाव की किसी नई अजीब दुनिया में नहीं जा रहे, हम तो बातचीत और जुड़ाव के उन्हीं तरीकों पर लौट रहे हैं जिन्होंने हमें हजारों साल से परिभाषित किया है, बस अब नए औजारों के साथ।
ये सोच ही कितनी अलग है ना?
बिल्कुल, ये डिजिटल दुनिया को अजनबी समझने के बजाय उसे अपनी पुरानी जड़ों से जोड़ देती है।
एक और विचार है सहयोग पर। प्रिंट ने हमें अकेले लेखक, अलग थलग जीनियस और सत्य के इकलौते स्रोत के मिथक में विश्वास दिलाया, लेकिन ज्ञान हमेशा से सहयोगात्मक रहा है, बातचीत और समुदाय से बना है।
ये हमारी हीरो पूजा वाली सोच को चैलेंज करता है।
हाँ, चाहे वो लेखक हो, वैज्ञानिक हो या कलाकार, ये याद दिलाता है कि हर आइडिया कहीं ना कहीं दूसरों से जुड़ा है।
तीसरा विचार, साक्षरता पर। हम साक्षरता की मौत नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसका बदलना देख रहे हैं, कुछ ऐसा जो ज्यादा भागीदारी वाला, ज्यादा सहयोगात्मक और शायद पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है।
ये उन चिंताओं का जवाब है जो कहती हैं कि इंटरनेट हमें बेवकूफ बना रहा है या हमारा ध्यान कम कर रहा है। जार्विस का नजरिया ज्यादा उम्मीद भरा लगता है।
चौथा विचार, सीधा संस्थाओं की बदलती भूमिका और लक्ष्य पर है। प्रिंट युग में सफल संस्थाएं वो थीं जो मानकीकृत जानकारी को कुशलता से बना और बांट सकती थीं। नेटवर्क के युग में सफल संस्थाएं वो होंगी जो इंसानी सहयोग को संभव बना सकें और उसे बढ़ावा दे सकें।
ये हर संगठन के लिए सोचने वाली बात है, स्कूल, कंपनी, सरकार, सबके लिए। क्या हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं या लोगों को आपस में जुड़ने और मिलकर काम करने में मदद कर रहे हैं? हमारी असली भूमिका क्या है?
और पांचवा विचार हमारी सोच पर ही। हर माध्यम अपनी तरह की बुद्धि या सोच को बढ़ावा देता है। प्रिंट संस्कृति ने विश्लेषणात्मक, एक क्रम में सोचने, लीनियर थिंकिंग को बढ़ावा दिया। नेटवर्क संस्कृति सहयोगात्मक, सिस्टम स्तरीय सोच, सिस्टम्स थिंकिंग को बढ़ावा दे रही है।
क्या वाकई इंटरनेट हमारे सोचने का तरीका बदल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।
हाँ, ये सब बहुत गहरे विचार हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, इन्हें इस्तेमाल कैसे करें?
बिल्कुल, जैसे शिक्षा में, क्या टीचर्स क्लासरूम में ऐसे प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं जहां बच्चे मिलकर काम करें, एक दूसरे के काम को देखें, सुधारें?
और मीडिया लिटरेसी, ये समझना कि जानकारी कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, इसे स्कूलों में और सीरियसली सिखाना चाहिए शायद।
जरूर, और ऑफिस में, क्या मैनेजर्स अपनी टीम को सिर्फ काम सौंपने के बजाय उन्हें आपस में बेहतर ढंग से कोलैबोरेट करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? क्या ऐसे टूल्स और तरीके अपनाए जा सकते हैं जो टीम वर्क को आसान बनाए?
या भी मैनेजर की भूमिका बदल रही है, वो सिर्फ बॉस नहीं बल्कि एक कोच या फैसिलिटेटर जैसा बन रहा है।
मीडिया बनाने वालों के लिए, क्या वो सिर्फ कंटेंट परोसने के बजाय अपने पाठकों या दर्शकों के साथ ज्यादा गहरी बातचीत कर सकते हैं? क्या वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई खबर कैसे बनी?
हाँ, और शायद बड़े पैमाने पर सबको एक ही चीज देने के बजाय छोटे खास समुदायों की जरूरतों पर ध्यान दे सकते हैं। मीडिया का लक्ष्य सिर्फ व्यूज बढ़ाना नहीं बल्कि एक भरोसेमंद कम्युनिटी बनाना हो सकता है।
और हम खुद अपने सीखने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ किताबें पढ़ने या कोर्स करने के अलावा ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, दूसरों के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं?
सीखना अब सिर्फ अकेले में इन्फॉर्मेशन जमा करना नहीं है बल्कि नेटवर्क का हिस्सा बनना और उसमें एक्टिव होना भी है।
देखें तो, क्या हमारी सरकारें, हमारी पॉलिसी बनाने वाले इस नेटवर्क वाली दुनिया की हकीकत को समझ रहे हैं? क्या कॉपीराइट जैसे पुराने कानून जो प्रिंट के लिए बने थे आज भी उतनी ही सही हैं?
मीडिया को रेगुलेट करने के तरीके बदलने की जरूरत है शायद।
हाँ, शासन का लक्ष्य शायद सिर्फ कंट्रोल करना नहीं बल्कि एक स्वस्थ और रचनात्मक डिजिटल समाज को सक्षम बनाना होना चाहिए।
तो इस पूरी चर्चा से अगर कुछ मुख्य बातें लेके जानी हो घर, तो वो क्या होंगी? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डिजिटल दुनिया में उथल पुथल है, ये कोई संकट या गिरावट नहीं है बल्कि ये इंसानी संवाद के विकास का एक अगला और शायद ज्यादा स्वाभाविक कदम है।
और दूसरी अहम बात जो इसी से जुड़ी है, वो ये कि हमारी कई समस्याएं शायद तकनीक की वजह से उतनी नहीं है
जितनी
हमारी पुरानी प्रिंट युग वाली सोच और संस्थाओं को इस नई नेटवर्क वाली हकीकत पर फिट करने की कोशिश की वजह से है। हमें अपनी संस्थाओं की और शायद अपनी खुद की भी भूमिका और लक्ष्य पर दोबारा सोचने की जरूरत है। कंट्रोल छोड़कर कनेक्शन पर ध्यान देना होगा।
हाँ, और ये भी कि मिलकर काम करना, नेटवर्क बनाना, ये तरीके अक्सर अकेले एक्सपर्ट या ऊपर से नीचे आने वाले हुक्मों से ज्यादा पावरफुल साबित हो सकते हैं, खासकर जब मसले पेचीदा हों।
बिल्कुल, ये किताब हमें एक तरह का नक्शा देती है इस बदलते हुए डिजिटल लैंडस्केप को समझने का। ये हमें ना तो बेवजह डराती है, न ही आंख बंद करके हर नई चीज को अपनाने को कहती है।
ये हमें एक ऐतिहासिक नजरिए से सोचने में मदद करती है।
हाँ, और ये समझने में कि तकनीक के इस दौर में भी हमारी जो बुनियादी मानवीय जरूरतें हैं, जुड़ने की, सीखने की, कुछ बनाने की, वो वही हैं। शायद हम तकनीक के जरिए अपनी उस सहयोगात्मक प्रकृति को ही और बेहतर ढंग से जी पा रहे हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।